ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आज के इस श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है और आप सबको मैं कृतज्ञ हूँ, मुझे आपने यहाँ पर बैठने का मौका दिया। आज हम चौथे स्कंद के श्रीमद् भागवत के तीसवें अध्याय से पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है प्रचेताओं का कार्यकलाप, श्लोक क्रमांक 6 है। जो इस प्रकार से है, काशिष्णुना कनकवर्णा विभूषणेन भ्राजत कपोल वदनो विलसत किरीटः अष्टायुधैर् अनुचरैर् मुनिभिः सुरेन्द्रैः रासेवितो गरुड़किन्नर गीतकीर्ति। काशिष्णुना कनकवर्ण विभूषणेन भ्राजत कपोलवदनो विलसत्किरीटः अष्टायुधैरनुचरैर्मुनिभिः सुरेन्द्रैः रासेवितो गरुडकिन्नरगीतकीर्तिः। काशिष्णुना कनकवर्णविभूषणेन भ्राजत कपोलवदनो विलसत्किरीटः अष्टायुधैर अनुचर अनुचरै मुनिभिः सुरेन्द्रैः रासेवितो गरुडकिन्नर गीतकीर्तिः। काशिष्णुना कनकवर्ण विभूषणेन भ्राजत कपोलवदनो विलसत्किरीटः अष्टायुधैरनुचरै मुनिभिः सुरेन्द्रैः रासेवितो गरुडकिन्नर गीतकीर्तिः। काशिष्णुना चमकीले कनक स्वर्ण वर्ण रंग के विभूषणेन आभूषणों से भ्राजत चमकते हुए कपोल मस्तक वदनह मुख विलसत झिलमिलाता हुआ किरीटह मुकुट अष्ट आठ आयुधय आयुधों से अनुचैर अनुचैर अनुचरय सेवा करने वालों से मुनि भी ही मुनियों से सुर इंद्रय देवताओं से आसेवित सेवित गरुड़ गरुड़ द्वारा किन्नर किन्नर लोक के वासी गीत गाते हुए कीर्ति महिमा। अनुवाद इस प्रकार से है, भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनका सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था। ये मुकुट झुलमिला रहा था और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगाया गया था। भगवान के 8 भुजाएं थी और प्रत्येक भुजा में एक विशेष आयुध था। वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे। ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान का वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाकर वैदिक स्तोत्रों से भगवान की महिमा का इस प्रकार से गान कर रहे थे कि मानो वो किन्नर लोक के वासी हो। सामान्य रूप से तात्पर्य में प्रभुपाद जी महाराज दिखते हैं। सामान्य रूप से विष्णु को 4 भुजाओं में 4 वस्तुओं के लिए प्रदर्शित किया जाता है और यह है शंख चक्र, गदा तथा कमल पुष्प। किंतु यहाँ पर उन्हें 8 भुजाओं में 8 प्रकार के आयुध धारण किए हुए दिखाया गया है। वीर राघव आचार्य के अनुसार शंख तथा कमल भी आयुध है। क्योंकि भगवान परम नियंता है, अतः वे जो भी अपने हाथ में धारण करते हैं उसे आयुध माना जा सकता है। 4 हाथ 4 प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं और अन्य 4 हाथों में वे धनुष, बाण, त्रिशूल और सर्प धारण करते हैं। श्री वीर राघव आचार्य शंख, चक्र, गदा, पद्म, शारंग, शर आदि 8 आयुध बताते हैं। किसी राजा के साथ सदैव उसके मंत्री, सचिव तथा सेनापति होते हैं। भगवान विष्णु के साथ भी उनके अनुचर यानी कि देवता, ऋषि, साधु इत्यादि रहते हैं। वे कभी अकेले रहते नहीं हैं, अतः भगवान के निराकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे स्वयं और उनके पार्षद सभी व्यक्ति हैं। इस श्लोक में दिए हुए वर्णन से लगता है कि गरुड़ किन्नर लोक के वासी हैं। किन्नर लोक के वासियों के स्वरूप भी गरुड़ जैसे होते हैं। उनके शरीर के अंग मनुष्य जैसे होते हैं और उनके पंख होते हैं। गीत कीर्ति ही शब्द ये सूचित करता है कि किन्नर लोक के वासी भगवान के यशोगान में अत्यंत निपुण होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जगदंड कोटि कोटिश्व अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के लोग होते हैं और प्रत्येक लोक की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। इस श्लोक के आधार पर हमें ये समझता है कि किन्नर लोक के वासी अपने पंखों से उड़ सकते हैं। एक अन्य लोक भी है जो सिद्ध लोक कहलाता है, जिसके वासी पंखों के बिना उड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। इस प्रकार प्रत्येक लोक में अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध हैं। यही भगवान की विशिष्ट सृष्टि का सौंदर्य है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदांतिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है। श्रीमद् भागवत के ऐसे सारे प्रसंग हैं, जितने भी प्रसंग हैं, वो एक एक प्रसंग भी अगर पूरे भागवत को भी छोड़ दिया जाए, एक एक प्रसंग भी लिया जाए, एक एक कथा भी ली जाए, तो भी वो जीव के परम कल्याण के लिए पर्याप्त हैं। एक कथा भी अगर हम आत्मसात कर लें उसकी, भले दशम स्कंदक भी नहीं पहुँचे, समझो एक कथा भी उसके अगर हम उसका सार ग्रहण कर ले, रस आस्वादन कर ले आचार्यों के सान्निध्य में, उनकी कृपा से, तो एक एक कथा हमें भगवत धाम पहुंचा सकती है, शुद्ध भक्ति को दिला सकती है। अभी देखिए यहाँ पर प्रसंग ऐसा है कि आप सब लोग सुन रहे हैं बहुत दिन से, प्रचिनी भरी नाम के राजा का विवाह होता है और उनको 10 पुत्र प्राप्त हो गए। उनको प्रचेत भी कहा गया है, प्रचेत 10 पुत्रों को प्रचेत कहा गया है। तो वो 10 पुत्र जो है वो तपस्या करने के लिए वन में जाते हैं, और वन में जब बहुत सुंदर वातावरण में पहुंचते हैं, स्वर्गीय वातावरण में, उसका वर्णन दिया है किस तरह से पक्षी गुंजरव कर रहे थे, फूल खिल रहे थे, हवा बह रही थी, पर्वत तालाब, सुंदर सुंदर पक्षियों का नाम भी दिया है। तो वहाँ पर एक जलाशय था, उसमें वो जब उतर गए तो अचानक जल में गुदगुदी मच गई और आवाज़ें आने लगी डमरू की और मृदंगों की और ड्रम्स की, और अचानक उसमें शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी महाराज ने उन्हें ऐसे प्रार्थनाएं दी, इतनी सुंदर प्रार्थना कि शिव जी महाराज बताते हैं कि ये सुंदर प्रार्थनाएं, केवल सुंदर प्रार्थनाएं जो गाएगा दिल से, हृदय से, भक्ति भाव से, उसे भगवान के दर्शन होंगे। इतनी सुंदर बात है। देखो, एक 10 भाइयों के एकत्र होकर आने से और एकत्र होकर पूर्ण प्रेम और सहयोग के साथ में एक गतिविधि करने जा रहे हो, वो है भगवान का, भगवान के लिए तपस्या करने जा रहे हैं, भगवान के लिए भजन करने जा रहे हैं। केवल इतने से ही शिवजी महाराज इतने प्रसन्न हो गए कि अपने आप बिना बुलाए प्रकट हो गए। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने शिव जी के लिए अलग तपस्या किया और उनके लिए मंत्र बोले, फिर उनको प्रसन्न किया, फिर उन्हें बोला क्या चाहिए बताओ, ऐसे नहीं, अपने आप ही प्रकट हो गए। तो ये सहयोग जो है भक्तों के बीच में, भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में, कितना महत्वपूर्ण है। हमारे प्रभुपाद जी भी कहते थे कि अगर आप मुझ पर प्रेम करते हो तो एक दूसरे से सहयोग करो भगवान की सेवा में। एकदम सिंपल व्याख्या बता दिया उन्होंने। अगर आप, हम प्रभुपाद पर प्रेम करते हैं, प्रभुपाद जी खुद कहते हैं, तो इसका प्रमाण यह है कि आप एक दूसरे के साथ में सहयोग करेंगे। और सहयोग किस में करना है? सहयोग भगवान की भक्ति में करना है। भगवान की भक्तिपूर्ण जो सेवा है, अलग अलग विविध प्रकार की सेवा है, उसमें सहयोग देना है। फिर वो जो प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं ये 10 भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर 10,000 साल तक जल में अपने आप को अंदर रखते हुए उसको गाते हैं, और उसके पश्चात इस सहयोगपूर्ण प्रेम पूर्वक प्रार्थनाओं को प्रतिसाद देते हुए स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। मतलब शिवजी जैसे भगवान जब कुछ कहते हैं तो वो झूठा नहीं होता है, उनको श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के परम भक्त हैं, जब कुछ वचन बोलते हैं तो वो परम परम वचन होता है, उन्हीं के कहने के अनुसार भगवान प्रकट होते हैं। ये प्रूफ देते हैं कि जो शिवजी ने कहा था वो सत्य था। और भगवान का भी वर्णन यहाँ पर अभी दिया है, अभी आपने, हमने सबने वो गाया। भगवान में से जनरली हम चार भुजा में देखते हैं, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए, लेकिन भगवान क्या नहीं कर सकते, विराट रूप में उनकी करोड़ों भुजाएं थी, करोड़ों मुख थे उनके, करोड़ों हाथ, करोड़ों पैर, ऐसा विशाल विश्वव्यापी अंग था उनका। और यहाँ पर गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है, आप लोग गए होंगे चटिकरा में, यहाँ पर भगवान की छठ पूजा की गई थी, वहाँ पर गरुड़ गोविंद जी प्रकट हैं। वहाँ पर श्रीदामा को भगवान ने कहा कि तुम गरुड़ बन जाओ, तो श्रीदामा जी गरुड़ बन गए। और जैसे ही वो गरुड़ बन गए तो ऐश्वर्य भाव प्रकट हो गया, तो भगवान ने अपने 12 भुजाओं का रूप दिखाया। और 12 भुजाओं में विष्णु का रूप प्रकट करके वो गरुड़ पर आरूढ़ हो गए, और वो दर्शन वहाँ पर है। तो वहाँ पर 12 भुजाएं हैं, 16 भुजाएं भी हो सकती हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, उनकी जब भी इच्छा होगी तो अनंत भुजाएं प्रकट कर सकते हैं या द्विभुजा में आ सकते हैं। और यहाँ पर 8 भुजा में प्रकट हो रहे हैं, और आचार्यों के द्वारा प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये 8 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म के बाद में धनुष भी है, बाण भी है, सर्प भी है, और एक चीज़ बताइए, त्रिशूल बताइए। और ऐसा अद्भुत दर्शन वो दे रहे हैं प्रचेताओं को। और जो वर्णन यहाँ पर दिया है उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। पहले श्लोक में दिया है कि गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मेरु पर्वत की चोटी पर छाए हुए बादल के समान प्रसन्न हो रहे थे। भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीताम्बर से ढका हुआ था, उनका गर्दन, उनका कौस्तुभ मणि से सुशोभित था और भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। अगले श्लोक में भी वर्णन आ रहा है, ये इतने विस्तार रूप में क्या वर्णन करने की जरूरत है। वो कह सकते थे मैत्रेय मुनि, ये भगवान ने दर्शन दिया और आगे की बातें जो महत्वपूर्ण है सुनना जरूरी है, लेकिन भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन बहुत आवश्यक है, इसलिए उसका विस्तार रूप में काव्यमय भाषा में वर्णन किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे मानो मेरु पर्वत की चोटी पर छाए गए बादल के समान प्रतीत हुए और उनके तेज से ब्रह्मांड का अंधकार दूर हो रहा था। आगे भी बहुत काव्यों में बातें की हैं, इसको अलंकार कहते हैं, हाँ, रूपक अलंकार। किसी चीज से भगवान के अस्तित्व का दर्शन का वर्णन करते हैं जिससे भगवान का दर्शन सुनने के लिए भी बहुत मधुर हो जाता है, बहुत रसमय हो जाता है। और ये सारे जो वर्णन हम सुन रहे हैं इसी प्रकार का दर्शन यहाँ पर भी होता है रोज के लिए, हाँ, 10,000 जाल तक पानी में ना रहकर भी और तपस्या पूर्वक मंत्र उच्चारण ना करते पर भी यहाँ पर आपको रोज फ्री में दर्शन हो रहा है। ये बड़ी लाभ की बात है, आप समझिए इस बात को। आचार्यों की कृपा से उनकी जो भक्ति है, उनका जो भक्ति भाव भरा हृदय है, उसके प्रतिसाद के रूप में भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। नहीं तो भगवान को कोई जरूरत नहीं आने की, लेकिन आचार्य पुकारते हैं अपने प्रेम भाव से तो यहाँ पर वो दर्शन देने लगते हैं अपने अद्भुत भाव में, और भक्त लोग फिर उनका श्रृंगार करने की सेवा करते हैं, इतना प्रेम से श्रृंगार करते हैं, दो दो घंटे उसका प्लानिंग करते हैं कि क्या पहनाना है, कल क्या पहनाएंगे, कौन कौन सा रंग है, कौन कौन सा वार है, उनसे भाव में करेंगे, गौचारण में करेंगे कि और किसी रूप में करेंगे, कि धनुष बाण के रूप में करेंगे रामनवमी के दिन। हाँ, इतना सुंदर चिंतन है वो, एक चिंतन, दिव्य चिंतन, गहरा चिंतन है, जो चिंतन करने मात्र से ही हृदय की शुद्धि हो जाती है। प्रभुपाद जी महाराज हमेशा कहते थे कि जो भक्त जो है, भक्तों अगर अर्चा विग्रहों की जो सेवा करते ना, वो भगवान के इतने पास में होते हैं, ऐसे बताते थे प्रभुपाद जी, इतने निकट हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि खटमल भी राजा के सिंहासन पर बैठता है लेकिन वो खटमल ही रहता है, वो राजा नहीं बनता है सिंहासन में बैठने पर, उसकी मनोधारणा केवल राजा के शरीर का खून चूसने की होती है। तो ये भगवान के इतने पास होने के बाद भी हम भगवान से दूर रह सकते हैं अगर हमारी चेतना उस सेवा में पूर्णतः चिंतनमय नहीं है। सब कुछ फाइनली सब कुछ जो है वो चेतना पर आधारित होता है। तो जब भक्त पुजारी सेवा करते हैं वो अगर इस चिंतन में रहेंगे कि हमें भगवान के श्री अंगों का, श्री विग्रहों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो भगवान के अत्यंत निकट है वो, भगवान उनसे प्रतिसाद भी देते हैं, उनके साथ आदान प्रदान भी करते हैं, उनको भावनाओं का अनुभव भी होता है, भगवान आज नाराज हैं, आज खुश हैं, आज कुछ बता रहे हैं, भगवान ये कई माध्यम से भक्तों को सूचना देते रहते हैं कि उनको क्या चाहिए अगर वो प्रसन्न हैं तो। तो ये जो सेवा है डीडी वर्शिप की बहुत महत्वपूर्ण है और हमें आपको ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है और हमको भी बड़ी खुशी होती है ये जानकर कि दर्शन करने को आना भी भगवान की अर्चा विग्रहों की पूजा है, डीटी वर्षिप है। आप अगर डीटी वर्षिप में सम्मिलित नहीं है, समझो ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, या तो आपके कई और सेवा कर रहे हैं आप और दर्शन के लिए आ रहे हैं, ये भी डीटी वर्षिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप श्रृंगार किए भगवान को देख रहे हैं, और अगर आप श्रृंगार किए भगवान को शास्त्रीय ढंग से देखेंगे तो आपकी डीटी वर्शिप की सेवा उन लोगों से कम नहीं है जो साक्षात श्री अंगों को स्पर्श करके उनको वस्त्र और अलंकार पहना रहे हैं। अगर हम पहले चरणों को देखेंगे, चरणों की तुलसी को देखेंगे, चरणों के लगाए हुए चंदन को देखेंगे, चरणों पर लगाए गए नूपुर को देखेंगे, फिर जंगा को देखेंगे, फिर कटी को देखेंगे, पीताम्बर को देखेंगे, फिर ऊपर नाभि को देखेंगे, वक्षस्थल को देखेंगे, भुजाओं को देखेंगे, भुजाओं में धारण किए मुरली हल या और कई आयुधों को देखेंगे, आज वहाँ पर वो ग्रेप्स लगाए हैं, अंगूर और वो गौचारण की दोरी भी लगाई है, इन सब को निहारेंगे, फिर मुख कमल को निहारेंगे, कहाँ कहाँ मुख कमल में पत्रावली का श्रृंगार किया है, कौन से कुंडल कान में पहने हैं, बालों का श्रृंगार कैसे किया है, मोर मुख धारण किया है, उसमें मोती धारण किया है, अलंकार धारण किया है, कौन सा चमक रहा है, हाँ, भ्राजत चमकीदा कभी कभी खड़े होते हैं ना तो ऐसा ही उसका रिफ्लेक्शन हमारी आँख में आता है, लाइट से उस अलंकार का रिफ्लेक्शन आँख में आता है तुरंत। फोटो भी निकालेंगे तो फोटो में भी रिफ्लेक्शन आता है। ऐसे विस्तार पूर्वक अगर हम भगवान का दर्शन करेंगे तो हमें भी वही लाभ होगा जो प्रत्यक्षाओं को यहाँ पर हो रहा है। साक्षात दर्शन करने का लाभ जो है वो हमको भी हो रहा है। ये नहीं कि हमको प्रचेत जैसा 10,000 साल जल में रहकर उन शिव जी का दर्शन करने के बाद भी मिले हुए प्रार्थनाओं को दोहराएंगे तभी प्राप्त होगा। वही श्लोक जो शिव जी ने दिए हैं वो हम भी दोहराएंगे तो हमें भी दर्शन होगा। और हमें प्रभुपाद जी की हमारे पर इतनी कृपा है कि बिना वो श्लोक किए भी हमको दर्शन हो रहा है और वो हमको श्लोक भी पठन करना चाहिए। इतनी कृपा है हम पर। ये संत जो होते हैं ना इतने दयालु होते हैं कि अपने भक्ति और अपने अधिकार, भक्ति का जो अधिकार प्राप्त है उनको, उससे अनंत जनताओं का कल्याण करते रहते हैं। श्री कृष्ण बलराम का विग्रह नंदगांव के बाद में हमारे मंदिर में है और ये भाव कहीं नहीं है। ये रमन रेती के क्षेत्र में भगवान क्रीड़ा करते हैं अपने बालों बालकों के साथ, इस रेती में खेलते हैं, मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हास्य प्रयास, भोजन करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, कभी भी आपको दर्शन दे सकते हैं क्योंकि इस क्रीड़ा भूमि में खेल रहे हैं वो, हमेशा चिरंतन रूप से खेल रहे हैं। उस भूमि की महिमा और भाव जानते हुए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कृष्ण बलराम जी का विग्रह स्थापन किया है। और प्रभुपाद जी स्वयं लिखे एक जगह पर, एक उनके बड़े ब्रजवासी अच्छे मित्र थे, बड़े भाव भरे मित्र थे उनके, वो एक दिन मंदिर में आए और उन्होंने कृष्ण बलराम की ओर कई घंटे दर्शन किया उनका। हम लोग 2 मिनट में दर्शन कर लेते चले जाते। उन्होंने कई घंटे दर्शन किया और बाद में प्रभुपाद जी को आके मिले और बताया कि मैं पूरे ब्रज में ढूंढा, कहीं कृष्ण बलराम मिले ही नहीं, बाद में पता चला कि आपने अपने मंदिर में पकड़ के रखा है उनको। ये भी भाव की बात है, वो तो सब जगह समाये हुए हैं लेकिन भाव से वो बताया कि आपकी, मतलब एक तरह से प्रभुपाद जी की सराहना किया उन्होंने, तो गौरव किया कि आपका भाव इतना श्रेष्ठ है कि कृष्ण बलराम आपके यहाँ रुके हुए हैं, आपके यहाँ विराजमान हैं, आपकी सेवा स्वीकार करते हैं, आपके भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। तो इसलिए ये सुंदर वर्णन जो है ना, कभी कभी लगता है क्या बोरिंग है, अभी आगे चलना चाहिए, कितना भी वर्णन करेंगे, हाथ में क्या है, पाँव में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, लेकिन इसमें इतना आनंद है उसको समझने में और उसको चिंतन करने में। और एक सुंदर बात कही गई है, देखिए आप, कि भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते, भगवान भी समाज प्रिय हैं। हाँ, उनको भी साथ में चाहिए, और कौन चाहिए, कोई पहरेदार नहीं है उनके साथ में, साधु हैं, ऋषि मुनि हैं उनके साथ में, जो अपने आभूषण समझते हैं भगवान। भगवान अपने भक्तों को अपने आभूषण समझते हैं, अपने श्रीअंग समझते हैं। हाँ, संग उपांग पार्षदम, उनके जितने भी साथ में हैं सब भक्त हैं उनके, सब साधु हैं, और वो भी उनकी सेवा में रहते हैं और भगवान भी उनकी सेवा में रहते हैं, ये उनकी विशेषता है। और प्रभुपाद जी हमेशा अपने बात को कभी छोड़ते नहीं है। कभी भी किधर भी कहना है बोलेंगे भगवान, देखो लोग कहते हैं वो इम्पर्सनल है, मायावाद, भगवान का विग्रह नहीं है, भगवान अव्यक्त है। देखो यहाँ पर कैसे अव्यक्त है, भगवान के साथ खुद भी है और साथ में 8 भुजाएं भी है, अलग अलग उसमें आयुध भी रखे हुए हैं और साथ में ऋषि मुनि देवता सब लोग हैं, गरुड़ जी भी हैं, कैसे अव्यक्त है वो तो व्यक्ति है, वही केवल व्यक्ति नहीं, उनके साथ में जो है सो वो सब भी व्यक्ति हैं। साधु जो है ना वो अपनी जो जिस पर उनका फोकस है उसको छोड़ता नहीं कभी भी, फिक्स फोकस है उनका। उस समय पर मायावाद का इतना प्रभाव था भारतवर्ष में और सब जगह पर, तो बार बार कई बातों का प्रमाण लेकर वो खंडन करते इस बात का, भगवान व्यक्ति है, केवल व्यक्ति नहीं है, परम पुरुषोत्तम है वो। और एक सुंदर बात कही गई है कि गरुड़ जी अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर कबूतर के पंख फड़फड़ाते हैं ना, कैसी आवाज आती है, हमेशा कबूतर की आवाज घर के पास में आती रहती है, लेकिन यहां जब गरुड़ जी के पंख फड़फड़ा रहे हैं तो वेदों के ध्वनि निर्माण हो रहे हैं, भगवान के गौरव के गीत निर्माण हो रहे हैं, सब सुनाई पड़ रहे सबको। तो ऐसे ये भगवान के दिव्य पार्षद हैं। जैसे राधा रानी जब चलती है तो राधा कृपा कटाक्ष में एक श्लोक में वर्णन आता है कि जब वो चलती है तो उनके नुपुरों से ध्वनि आती है, उन नुपुर के ध्वनि से वेद का निर्माण होता है, जितने भी श्रुति है, जितनी भी सुश्राव्य यानी सुनने लायक चीज़ है, वो सारी सुनने लायक ध्वनि जो है, श्लोक जो है, ऋचाएँ जो हैं, वो राधा रानी के चरणों के नूपुर की ध्वनि से निर्माण होती हैं। वैसे यहाँ पर गरुड़ जी के पंखों के फड़फड़ाने से वैदिक स्त्रोतों का निर्माण हो रहा है और सब लोग सुन रहे हैं उसको, कीर्ति भी ही हाँ भगवान का कीर्ति का गुणगान हो रहा है उसमें, एक साथ में भगवान को लेकर भी जा रहे हैं, एक साथ में भगवान का गुणगान भी कर रहे हैं, मुख से जरूरत नहीं करने की, पंखों से भी कर रहे हैं। ऐसे भगवान के साथ रहने का जो जीवन है वो दिव्य है, इसकी दिव्यता इस प्रकार से बड़ी अद्भुत चीज़ें होती रहती है भगवान के सानिध्य में। भगवान के सानिध्य में भगवान भी अद्भुत चीज़ें करते रहते हैं और भगवान के भक्त भी वो सब अद्भुत चीज़ें अद्भुत कार्य कर सकते हैं। केवल भगवान का सानिध्य होना चाहिए, भगवान के निकट हमको रहना चाहिए। हाँ, हम लोग कहते हैं उपवास, उपवास का मतलब है भगवान के साथ रहना, भगवान के पास रहना। वो केवल एकादशी के दिन करने की जरूरत नहीं है। भोजन का नियम तो एक दिन आप एक पक्ष में महीने में दो बार कर सकते हैं, लेकिन उपवास का नियम भगवान के इसलिए रोज करना चाहिए। भगवान के नामों के माध्यम से, भगवान के भक्तों के संग के माध्यम से, भगवान के शास्त्रों को श्रवण के माध्यम से, भगवान की सेवा करने के माध्यम से भगवान का सान्निध्य बनाए रखना चाहिए। भगवान का सान्निध्य जो है, दिव्य रूप से सान्निध्य जब करते हैं, वो एक प्रकार से माया के प्रति दिया, माया के विरोध में दिया गया एक टीका है, वो वैक्सीन है, वैक्सीन। भगवान के सान्निध्य में रहने से वो माया का प्रभाव नहीं होता हमारे ऊपर। हम सब लोग माया के प्रभाव से पीड़ित हैं, सब लोग माया के लत्ता प्रहार को सहन करते हुए दुनिया में दुख भोग रहे हैं और सब लोगों से उसको छुटकारा चाहिए। कौन नहीं ऐसा व्यक्ति जो माया से छुटकारा नहीं चाहता, बोलता नहीं नहीं भगवान की इच्छा है तो माया के लात खाते रहेंगे, ऐसा कोई कहता नहीं है, ऐसा एक मूर्खी व्यक्ति कह सकता है। तो भगवान का सान्निध्य होने से किसी भी प्रकार से हम भगवान के प्रभाव से, माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते और सब प्रकार के भगवान के सान्निध्य के जितने तरीके हैं उसमें भगवान की सेवा जो है वो सबसे प्रधान और पावरफुल है। भगवान के नाम भी जप करना भगवान की सेवा है और ये भगवान की सेवा जो है हमारे और भगवान के शाश्वत संबंध का एक प्रमाण है। अगर आपको निश्चित रूप से भगवान के साथ रहना है और सदैव रहना है, हमेशा के लिए रहना है, तो भगवान की सेवा में हमको रहना चाहिए। खास करके ब्रज में रहना है तो बिना सेवा के यहाँ नहीं रहना चाहिए। केवल ब्रज का आनंद लेने के लिए रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रज का आनंद जो है वो भी एक प्रकार का स्पिरिचुअल इल्यूजन है हमारे लिए। चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, आज वहाँ प्रसाद है, वहाँ भंडारा है, यहाँ प्रिय यात्रा जा रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, चलो यहाँ पर एक उत्सव हो रहा है, वहाँ पर कुछ और बट रहा है, चलो देख के आते हैं, वहाँ पर उत्सव हो रहा है, अच्छा है, कुछ खराब चीज़ नहीं है। लेकिन भगवान के भक्ति में जो बुनियाद बननी चाहिए वो ऐसे ही कार्यकलापों से बनती नहीं है। भगवान की सेवा, भगवान के भावना में, भगवान की चेतना में अगर आपको बुनियाद बनानी है तो आपको एक ठोस सेवा लेनी होगी, जो ठोस सेवा भक्तों के संग में होगी और गुरु जी के आदेश के अंदर होगी, गुरु जी के निर्देश के अंदर होगी। उनके जब निर्देश प्राप्त होता है और उस निर्देश में जब हम सेवा करते हैं तो हम एक प्रकार से उनकी छत्रछाया में रहते हैं कृपा के, जिस छत्रछाया की वजह से माया हम पर असर नहीं करती। नहीं तो श्री वृंदावन धाम में रहना बहुत कठिन है, क्योंकि यहीं पर कृष्ण है, यहीं पर कंस भी है, यहीं पर कृष्ण है, यहीं पर पूतना भी है। जितनी माया बंबई में नहीं होती उतनी वृंदावन में होती है क्योंकि वहीं पर सब लोग थे महान राक्षस। जब तक बाल बालों ने, ब्रजवासियों ने कृष्ण का शरण, कृष्ण की शरण ग्रहण करके रखी थी, तब तक किसका भी परिणाम उन पर नहीं हुआ। ये उनका रहस्य है, इतनी भयंकर प्रकार का आतंक आसपास में होने पर भी ग्वाल बालों ने, सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की शरण कभी छोड़ी नहीं, इसलिए उन पर कभी भी इन राक्षसों का चेतना पर परिणाम नहीं हुआ। शरीर पर कभी दुखदायक परिणाम हुआ लेकिन चेतना पर कभी भी परिणाम नहीं हुआ। अरे अरिष्टासुर का संघ किया 6 घंटे के लिए, अभी युद्ध हो रहा था तभी, कुछ नहीं हुआ। तो हमें भी अगर यहाँ पर जो तीव्र रूप से श्री कृष्ण का विग्रह है, श्री कृष्ण का अस्तित्व यहाँ पर उपस्थित है, उपलब्ध है, उस प्रकार से तीव्र रूप से माया का भी उपस्थिति हमें सताती है, अगर उससे मुक्त रहना है तो हमेशा श्री कृष्ण के चेतना में गुरु जी के आदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार सेवा के अंदर स्थित रहना चाहिए। तब यहाँ का वास जो है वो परिपूर्ण हो जाता है और यहाँ का वास का परिपूर्ण लाभ हम सबको नित्य रूप से प्राप्त होते रहता है। अन्यथा यहाँ का निवास भी हमें हृदय में एक भी जरा सी भी अनुभूति, दिव्य अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति उत्पन्न नहीं कर सकती है, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। और हाइड्रोजन के दो आइटम और ऑक्सीजन का एक आइटम इकट्ठा करेंगे तो ही पानी पैदा होता है। अब चार हाइड्रोजन लेंगे और तीन ऑक्सीजन लेंगे तो पानी नहीं पैदा होगा, और कुछ पैदा हो सकता है या पैदा होगा ही नहीं। तो हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, और हम लोग मनगढ़ंत अपने फॉर्मूले नहीं बना सकते। तो ब्रज का निवास करना है और ब्रज के निवास का पूर्ण लाभ लेना है तो हमें वो फॉर्मूला के अंदर ही रहना है। और यहाँ पर वैसे भगवान का सान्निध्य बड़ा आसान है, क्योंकि ब्रज भूमि जो है वो स्वयं इतनी शक्तिशाली है कि इसमें आते ही, इसके रज में प्रवेश करते ही ऐसा एक दिव्य आधार प्राप्त होता है, जो इंग्लिश में कहते हैं पुश, ऐसा एक धक्का मिलता है ऊपर जाने के लिए आध्यात्मिक तरीके से, कि जो बम्बई में हम लोग स्ट्रगल करते हैं जप करने में, वो आसानी से यहाँ जप होता है। मन भी लगता है, अटेंशन भी रहता है, ध्यान भी रहता है, और 16 माला के बाद ऐसा लगता नहीं कि अभी कल तक उसको विश्राम दे और कल मुलाकात करें माला से वापस, तो लगता है कि और करते रहें। ये यहाँ की दिव्य अनुभूति है, एक अलौकिक शक्ति यहाँ प्राप्त होती है यहाँ रहने से। लेकिन ये सब चीज़ के लिए चेतना सही होनी चाहिए। अगर चेतना हमारी सही दिशा में है, सही जगह पर स्थित है, सही भाव है हमारा, तो सिर्फ वृंदावन धाम यहाँ पर देने के लिए बैठा है, भर भर के हम लोगों को सिंचित करने के लिए, भाव ने भावना से डुबोने के लिए बैठा है वृंदावन धाम। तो इसलिए ये जो चिंतन यहाँ पर दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम चिंतन करेंगे तो उस चिंतन से माया का चिंतन नष्ट होगा, क्योंकि मन जो है हमारा हमेशा चिंतन करते रहता है, कॉन्स्टेंट। हम सब लोग समाधि में हैं, हाँ, सुनकर आश्चर्य होगा आपको, लेकिन समाधि अलग अलग विषयों की है। किसी की भोग की समाधि चल रही है, किसी की पैसे की समाधि है, किसी की और किसी चीज़ की है, पद की समाधि है, किसी की प्रतिष्ठा की समाधि है, और बहुत लोगों की यहाँ पर भगवान की सेवा की समाधि है। रूप गोस्वामी समझाते हैं, एक बार एक संत को किसी ने पूछा कि आप अगर भक्ति की व्याख्या एक शब्द में कीजिए, वाक्य में नहीं, एक शब्द में कीजिए आप भक्ति की व्याख्या, तो उन्होंने कहा कि एब्सॉर्प्शन, मग्नता, भगवान के विषय में मग्न होना, यही भक्ति है। तो ये भूमि वृंदावन की हमें भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में मग्न होने के लिए बहुत ही अनुकूल है, अति अति अनुकूल है। और पतित से पतित जीव भी, जीव को भी वो श्रेष्ठ बना सकती है, इतनी शक्ति ब्रजभूमि में है, क्योंकि ब्रजभूमि साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। नाम रूप लीला धाम, ये चार चीज़ें भगवान से अभिन्न नहीं है, अभिन्न है मतलब भिन्न नहीं है, और ये चार चीज़ें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक अंतर ज़रूर है कि भगवान से भी ये चार चीज़ें अधिक कृपालु हैं, भगवान से उनका नाम अधिक कृपालु हैं, भगवान से अधिक उनका धाम कृपालु है, भगवान से अधिक उनका रूप कृपालु है, और भगवान से अधिक कृपालु उनका धाम है। कभी भगवान भी उसको कभी माफ़ नहीं करता है, तो धाम उसको माफ़ कर देता है। किसी और कल्प में ब्रह्मा जी का ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए और भगवान को दंडवत किया और माफ़ी मांगी, तो भी भगवान ने उनको माफ़ नहीं किया, तो भगवान ने फिर ब्रज की दंडवती परिक्रमा की है, ब्रज भूमि की दंडवती परिक्रमा की है, ब्रज भूमि के रज का आश्रय लिया है, इस रज की, इस भूमि की इस प्रकार से सेवा किया है, तब जाकर ब्रह्मा जी उस अपराध से मुक्त हो गए, ऐसे भी एक शास्त्र में कल्प में वर्णन आता है। तो जो अपराध कभी भगवान भी स्वयं माफ नहीं करना चाहते, वो अपराध भी नाम रूप लीला और धाम से, कृपा से प्राप्त धो सकते हैं, हम उसको स्वच्छ कर सकते हैं। तो ये रहा भगवान के धाम का और भगवान के विग्रह का महात्म्य। इसके आगे भगवान दर्शन दे रहे हैं उनको, हाँ, और दर्शन देकर उनके वार्तालाप भी करते हैं। दोबारा एक बार कहते हैं कि आप लोगों का सहयोग इतना आकर्षक है कि जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो व्यक्ति सुबह और शाम आपको याद करेंगे, मतलब प्रचेताओं को याद करेंगे, उनकी भी मित्रता बढ़ेगी, अपने परिवार से बढ़ेगी, अपने गुरु भाइयों से बनेगी, सभी जीव मात्र से उनकी मित्रता बढ़ेगी और उनका जो मतभेद है, भाव भेद है, वो सब समाप्त हो जाएगा। जो भी व्यक्ति सुबह शाम प्रचेताओं को ध्यान करेंगे और उनको अपने सहयोगियों से और अपने ग्रुप से और अपने समाज से अगर कोई मतभेद और कोई पीड़ा हो रही है तो इनकी याद करने से वो सब समाप्त हो जाएगा और आपका मित्रता और प्रेम बढ़ेगा, उनसे सहयोग बढ़ेगा। हाँ, कितनी सुंदर बात है। देखिए आप, 10 लोगों ने मिलकर एक जगह पर किसी समय किसी युग में एक उदाहरण स्थापन किया, उसके वजह से हम सबको अनंत युगों तक ये वरदान प्राप्त हो गया कि इनका केवल याद करेंगे तो भी हमारी मित्रता और हमारा भजन बढ़ेगा। देखो कितनी बढ़िया बात है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि इस दुनिया में बहुत सब कुछ चीज़ है लेकिन एक अच्छा उदाहरण की कमी है, इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एन एग्जाम्पल। हाँ, सब कुछ शास्त्र है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन जब तक एक उदाहरण नहीं प्राप्त होता है, उदाहरण यानी जो अमल करने वाला व्यक्ति। हाँ, प्रभुपाद जी ऐसे एक उदाहरण थे जिन्होंने अपने उदाहरण से लोगों को प्रेरणा दिया भक्त बनने के लिए। उनके पहले भी शास्त्र थे, उनके पहले भी बहुत चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने इन शास्त्रों को एक उदाहरण करके अमल करते हुए लोगों को दिखाया। उनकी प्रेरणा से कितने हजारों लाखों और करोड़ों लोग प्रेरणा प्राप्त करके भक्त बन रहे हैं। वो जाने के बाद भी आप देख रहे हैं, आज कितने साल हो गए, अभी 40 साल हो गए जाकर, अभी भी उनकी संस्था जो दुगने और रात चौगुने बढ़ रही है। एक उदाहरण होना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे हजारों सितारे होने से क्या लाभ है, रात के अंधेरे में उनके द्वारा रोशनी प्राप्त नहीं हो सकती है, एक चांद होगा तो पूरे विश्व को रात के समय पर शीतलता के साथ में ऐसा प्रकाश देगा, अमृतमयी प्रकाश, क्योंकि चंद्र के पास अमृत होता है इसलिए उनके किरणों में शीतलता और आनंद का अनुभव होता है, कृष्ट और कष्ट नहीं होते उसके अंदर। तो ये एक उदाहरण है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो श्लोक शिवजी ने आपको दिए हैं ये कोई भी उच्चारण करेगा तो भगवान कहते मेरा दर्शन होगा, और इन श्लोकों को उच्चारण करने के बाद में जो भी आपकी भगवान की सेवा में इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाएंगी और आपके जीवन की परिपूर्णता को आप प्राप्त हो जाएंगे। कितनी बड़ी चीज है, देखो आप इतनी सरल बना के रखिए, थोड़े समय में आप इसको कर सकते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत ऐसी ही घटनाओं से भरा हुआ है, केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन है इसके अंदर, कोई और कोई कर्मकांड, ज्ञान कांड, योग कांड और कोई उपासना कांड इसके अंदर नहीं है, केवल भक्ति है, शुद्ध भक्ति, अमलम पुराणम। हाँ, कोई दोष नहीं इसके अंदर, जीव के परम कल्याण की हर बात इसमें सम्मिलित है और वो विविध रूप से सम्मिलित है। आपको और ये कथा पसंद नहीं है तो दूसरी कथा अवेलेबल है, वो भी बोर हो गए तो तीसरी कथा अवेलेबल है। हो सकता है हमारे बद्ध अवस्था में हमारी ऐसी चेतना हो सकती है दूषित दोषपूर्ण, लेकिन कितनी विविध प्रकार की लीलाएं यहाँ वर्णन किया। कुंती से पांडवों से परीक्षित महाराज से आरंभ होती है, वो दशम स्कंद के आगे भी उद्धव जी महाराज की कथा चल रही है। हर कथा में वो शक्ति है जो आपको भगवान के भक्ति का लाभ दे सकती है। तो इसलिए ये प्रचेताओं का जो वर्णन आता है इसमें बहुत प्रेरणादायी है। हम सब लोगों को इसमें विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में ये कैसे हम लागू कर सकते हैं, क्योंकि भौतिक जीवन में कैसा होता है, जब तक हम लोग बद्ध हैं तब तक हमारे मतभेद चलते रहेंगे। कोई भी एक काम ले लो आप, प्रभु जी वो नाटक में काम करते हैं, वो नाटक में जब कोई लिखता है बोला ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे लिखो डायलॉग, फिर बोलेगा ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो, ऐसे एक्टिंग करो, नहीं नहीं ऐसे करना चाहिए, नहीं ये म्यूजिक क्यों दे रहे हो, वो म्यूजिक दो। जैसे जितने व्यक्ति हैं, मराठी में एक कहावत है व्यक्ति तितक्या प्रकृति, जितने व्यक्ति हैं उतने स्वभाव मिलेंगे आपको, और जितने अधिक लोग काम करें उतने अधिक मत प्रभाव मिलेंगे आपको। लेकिन फाइनली हमको अगर भगवान की सेवा करना है तो सारे अपने मतभेदों को बाजू में रखे भगवान के लिए एक मत को स्वीकार करके आगे चलना है। इसको कहते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। अगर आपको ग्रुप में सेवा करनी है किस चीज़ को, और मुझे बताइए आप कौन सी सेवा ऐसी है जो आपको ग्रुप की जरूरत नहीं है। हर सेवा में आपको लोगों की सहायता की जरूरत है। आप अच्छे कुक भी होंगे और आप रसोई बना रहे फिर भी आपको किचन की जरूरत है जो किसी ने बनाया हुआ है, आपको बर्तनों की जरूरत है, आपको सब्जियों की जरूरत है, आपको चावल की जरूरत है, आपको दूध की जरूरत है, वो कोई ना कोई लाके दे रहा है। सब चीज़ हम नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें तैयार होती है वाकई आगे की हम जाके करते हैं, और जो कुछ लोग खाना बनाते हैं तो कुछ लोगों को सब्जी लाना पड़ता है, वो सब्जी लाने लाकर देते हैं, वो हमारे काउंसलिंग ग्रुप के अंदर हमारी पिकनिक हुई। हाँ, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि सहयोग कैसा होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पिकनिक में हम लोग भेलपूरी खाएंगे। तो किसी ने उसके व्यंजन लाए, किसी ने खजूर की चटनी बनाई, किसी ने हरी चटनी बनाई, किसी ने उस पर लाने के लिए वो धनिया का पत्ता लाया, किसी ने उसके लिए और लाया, किसी ने ये लाया, किसी ने वो लाया, और सब लोगों ने अनेक प्रकार की चीज़ लाकर वहाँ पर एक जगह बैठकर उस भेलपूरी को बनाया और सबको परोसा। उस दिन मुझे इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है ये। ऐसा नहीं बोला अरे तो चटनी का रियल स्वाद भेल पे आएगा, वो तो आप बना रही हो, अपने तो बेस्ट काम तो आपने ले लिया, मुझे करना था उसको। ऐसा किसी ने सोचा नहीं, अपने आप। और किसी ने बोला अरे मैं प्लेट लाऊंगा, उसको देने के लिए प्लेट चाहिए ना, कैसे अपने हाथ में थोड़ी देंगे। प्लेट दिया, प्लेट लाया किसी ने। किसी ने बोला मैं बैठने के लिए आसन लाऊंगा जिसमें बैठ के भेलपूरी खाएंगे। किसी ने बोला मैं ऑल्टर लेके आऊंगा और जो आप लोग सब लोग मिलकर वो भेलपूरी बनाएंगे उसको भगवान को भोग लगाऊंगा और तुलसी और घंटी भी लेके आऊंगा। अरे वो भी जरूरी है, केवल भेलपूरी सब सहयोग से बनना थोड़ी जरूरी, वो सब बनने के बाद में उसको भोग लगाना भी जरूरी है। और किसी ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हम सबको भोल परोसेंगे, आप जो बनाएंगे वो हमको सबको देंगे। उस दिन मुझे इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि यही भक्ति जीवन है। अपने अपने निजी मत को बाजू में रखे, सबके आनंद के लिए क्या अच्छा है उसको बड़े सहयोग के भाव से करना और सबके आनंद की अपेक्षा करना, उससे उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। चाहे हम किसी मुंबई के शहर के किसी उपवन में पिकनिक मनाने गए होंगे और भेलपूरी खा रहे हैं वहां पर बैठकर, लेकिन उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि वो सब भगवान के संबंध में एक तो कर रहे हैं तो उसमें सब लोग ने अपना अपना सहयोग दिया उसके अंदर, वाद विवाद नहीं किया। और बाद में बोला नहीं या आपकी चटनी अच्छी नहीं थी, अगर मैं बनाते तो कितना अच्छा बना देते, आपको आता नहीं बनाने को, सब भेल का गड़बड़ कर दिया आपने पूरा। ऐसा किसी ने नहीं कहा, सब लोगों ने प्रेम से पाया, प्रेम से दिया गया उसको। मैंने आपको एक साधारण उदाहरण दिया, आज की दुनिया का उदाहरण दिया। तो सहयोग ऐसा होता है और होना चाहिए। उस प्रकार से ये मंदिर बनाया गया, कितने लोगों ने ये पर सहयोग दिया है। और भक्ति विधान तो हॉस्पिटल बनाया गया, ये भक्ति विधान तो हॉस्पिस यहाँ बनाया गया, वो और मंदिर बन रहे हैं, फार्म हाउसेस बन रहे हैं, कहीं और सेवाएं हो रही है, यहाँ पर वृद्ध लोगों के लिए बिल्डिंग बनने जा रही है उनका सहायता करने के लिए, कई प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक आदमी से हो सकते हैं क्या, वो कई लोगों के प्रकार के उनकी कुशलताओं का उसमें सहयोग होना पड़ता है तब जाकर दिव्य प्रोजेक्ट प्रकट होता है। और कोई भी भगवान की सेवा का प्रोजेक्ट जो है जब तक भक्तों का सहयोग नहीं है तब तक प्रकट नहीं होता है, बिल्डिंगें तैयार हो जाएंगी बंद पड़ जाएंगी बाद में वो, लेकिन प्रकल्प जो है प्रकट होते हैं और वो आगे बढ़ते हुए विस्तार होते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसका रहस्य ही है कि पीछे कुछ लोग सहयोग पूर्ण अपने अपने अहंकारों को बाजू में रखे सहयोग करते हुए सेवा दे रहे हैं, इसलिए वो प्रोजेक्ट निर्माण भी हुआ और उसका विस्तार भी हो रहा है, ये उसका रहस्य है। आज भी प्रभुपाद जी की संस्था चल रही है क्योंकि बहुत मतभेद लोगों के अंदर है, लेकिन सहयोग और एक मत भी है किसी मत पर, अपने मत को बाजू में रखकर त्याग करके सब लोगों के अच्छे के लिए कौन सा मत योग्य है उसमें सहयोग लोग दे रहे हैं, वो सबसे बड़ा त्याग है। कोई वस्त्र छोड़ना, भोजन छोड़ना और दूध पे रहना, ये बड़ा त्याग नहीं है। मतभेदों को छोड़कर एक मत में सहयोग देना ये बड़ा सूक्ष्म सहयोग है और वो भगवान को बड़ा प्रसन्न करता है। और हम लोगों को अगर निजी रूप में या भगवान में प्रगति करनी है भगवान की भक्ति में, तुमको ये सहयोग देना ही होगा। वो हमारे लिए भी अनुकूल है, हमें भी प्रसन्नता देगा और हमारे समाज को भी आगे बढ़ाएगा, सबको कलेक्टिवली भी भगवान की भक्ति में आगे जाने के लिए सहायता करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कोई किसी का प्रश्न है, क्या बोल रहे हैं? बस ये कथा आपने सुनी अभी प्रजातस की, आप सुन भी रहे हैं। बस जैसे आप अपने बेटे को कैसे याद करते हैं, समझो वो अमेरिका में है तो आप कैसे याद करते हैं, वैसे उनको याद करना। अपने बेटे को कैसे याद करते हैं, तो यहाँ पर नहीं होंगे शायद, दिल्ली में आगरा में होंगे, कैसे याद करते हैं, वैसे याद करना, नॉर्मल याद करना है, कोई विशेष उसमें अलंकारिक याद नहीं करनी। और कोई प्रश्न है किसी का? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय।